आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत की ज़रई मसनूआत को बरामदात के लिए साजगार और आलमी सतह पर मुकाबला जाती बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने ओडिशा में 3,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया है। एविएशन के जाब्ताकार इदारे DGCA ने जेवर में नोएडा बैन-अल-अक़वामी हवाई अड्डे के लिए एरोड्रोम लाइसेंस की इजाजत दे दी है। नेपाल में बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आम इंतखाबात में मुकम्मल कामयाबी की जानिब बढ़ रही है। वोटों की गिनती जारी है। मगरबी एशिया के तनाजे का आज 8वां दिन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ उस वक्त तक कोई समझौता नहीं हो सकता जब तक कि वो बिला शर्त हथियार न डाल दे। और बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप के मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में दाखिल हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पैदावार और बरामदाती सलाहियत में इजाफे के मकसद से भारत की आबोहवा की मुतनव्वे सूरतेहाल को पूरी तरह इस्तेमाल करने की जरूरत पर जोर दिया है। जनाब मोदी ने मुल्क की ज़रई मसनूआत को आलमी सतह पर मुकाबला जाती बनाने के लिए ज्यादा कीमत वाली फसल की पैदावार में इजाफा करने पर भी जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वसीले से ज़िराअत और देही तब्दीली के मौके पर बजट के बाद से एक वेबिनार से खिताब कर रहे थे। उन्होंने मुंतकिल होती हुई आलमी मांग और भारत के ज़रई शोबे को बरामदात के लिए साजगार बनाने की जरूरत को उजागर किया।
आज दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है। इस वेबिनार में अपनी खेती को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने पर भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा आवश्यक है। हमारे पास डाइवर्स क्लाइमेट है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध है। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है और एक्सपोर्ट ट्रेंड को बढ़ावा देता है।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज दुनिया में सेहत के बारे में ज्यादा बेदारी है, जिसमें मजमुई हिफ्जान सेहत और ऑर्गेनिक खुराक पर खास तवज्जो मरकूज है। माहीगिरी के शोबे के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि भारत मछली की पैदावार करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है।
एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर फिशरीज सेक्टर का पोटेंशियल भी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है। आज हमारे अलग अलग तरह के जलाशय, तालाब, ये सब मिलाकर लगभग 4 लाख टन मछली उत्पादन होता है, जबकि इसमें 20 लाख अतिरिक्त उत्पादन की संभावना मौजूद है। हमारे पास रूरल इनकम को डाइवर्सिफाई करने का अवसर है। फिशरीज एक्सपोर्ट ग्रोथ का बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है, दुनिया में इसकी मांग है।
वज़ीर-ए-आज़म ने ई नैम और डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे के फरोग का जिक्र करते हुए ज़िराअत में टेक्नोलॉजी कल्चर पर भी इजहार ख्याल किया। जनाब मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, ग्रामीण सड़क योजना और अपनी मदद आप ग्रुपों की माली मदद से देही मईशत में लगातार मजबूती आई है। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कल ओडिशा में 3,770 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इनमें डेयरी के फरोग से मुतालिक कौमी बोर्ड NDDB, ओडिशा की दूध की पैदावार करने वाली इमदाद बाहमी पर मबनी फेडरेशन ओमफेड और रियासती सरकार के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शामिल हैं। जनाब शाह ने भारतीय किसानों के कीमियावी खादों से मुतालिक इमदादी बाहमी के लिमिटेड इदारे के पारादीप यूनिट में सल्फ्यूरिक एसिड के तीसरे प्लांट का भी इफ्तिताह किया। जनाब शाह ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि जिन प्रोजेक्टों का आगाज किया गया है वो ओडिशा की तरक्की में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि पारादीप में सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट से घरेलू पैदावार में इस्तेहकाम पैदा होगा और कीमियावी मादों के मैदान में भारत को खुद कफील बनने में मदद मिलेगी।
इपको का सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का एक विराट कारखाना लोकार्पित हुआ। इस कारखाने के माध्यम से इपको अब सल्फ्यूरिक एसिड के मामले में आत्मनिर्भर होगा और आने वाले दिनों में इपको और क्रिपको मिलकर पूरे देश को सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में आत्मनिर्भर करेंगे।
जनाब शाह ने अंदरूनी सलामती का जिक्र करते हुए कहा कि मरकज ने बाएं बाजू की इंतहा पसंदी के खात्मे की कोशिशें तेज कर दी हैं। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि मुल्क इस महीने के आखिर तक नक्सल नजरिए से पाक हो जाएगा। इमदाद बाहमी और दाखिली उमूर के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज उत्तराखंड के हरिद्वार के एक रोजा दौरे पर रहेंगे। जनाब शाह उत्तराखंड हुकूमत के 4 साल मुकम्मल होने पर मुनाकिद किए जाने वाले प्रोग्राम जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल से खिताब करेंगे। इस मौके पर जनाब शाह रियासती हुकूमत की हुसूलियाबियों का मुजाहरा करने वाली नुमाइश का इफ्तिताह भी करेंगे। इसके अलावा वो नए फौजदारी कवानीन पर मरकूज रियासती सतह की नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे। अपने दौरे में जनाब शाह रियासत की तरक्की से ताल्लुक रखने वाले कई अहम तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल DGCA ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर के मकाम पर नोएडा बैन अलाक्वामी हवाई अड्डे के लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को एरोड्रोम लाइसेंस जारी कर दिया है। ये लाइसेंस सभी मौसमों में कामकाज के लिए अवामी इस्तेमाल के जुमरे के तहत जारी किया गया है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने बताया कि यह हवाई अड्डा 4 मरहलों में तैयार किया जा रहा है, जिसमें कई किस्म के कार्गो मरकज होंगे। पहले मरहले में एक रनवे और एक टर्मिनल होगा। हवाई अड्डे पर तकरीबन 1,20,00,000 मुसाफिरों के लिए सालाना तौर पर आने जाने की सहूलत होगी, जबकि सभी मरहले मुकम्मल होने के बाद नोएडा बैन अलाक्वामी हवाई अड्डे में 7 करोड़ मुसाफिरों के लिए सालाना तौर पर आने जाने की गुंजाइश मौजूद होगी। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने उत्तर प्रदेश सरकार को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि यह हवाई अड्डा कौमी राजधानी खित्ते और मगरबी उत्तर प्रदेश के लिए एविएशन राब्तों को मुस्तहकम बनाने की जानिब एक बड़ा कदम है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मगरबी बंगाल के एक रोजा दौरे पर रहेंगी। सदर जमहूरिया अपने दौरे के दौरान बैन अलाक्वामी संथाल काउंसिल की जानिब से मुनाकिद की जाने वाली नवी बैन अलाक्वामी संथाल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। नेपाल में बालेंद्र शाह की मकबूल क्यादत वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RSP आम इंतखाबात में वाज़े अक्सरियत हासिल करने के करीब है। हिमालयाई मुल्क में पुरतशद्दुद जेन ज़ी एहतजाज के बाद ये पहले पार्लियामानी इंतखाबात हैं। इंतखाबी कमीशन के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक 165 में से 28 हलकों के हतमी नतीज का ऐलान कर दिया गया है। फर्स्ट पास द पोस्ट निज़ाम के तहत राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 20 सीटें जीत ली हैं और वो 97 हलकों में आगे है। नेपाली कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं, जबकि वो 9 पर आगे है। वहीं UML ने 1 सीट जीती है और 13 सीटों पर सबकत लिए हुए हैं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने 2 सीटों पर कामयाबी हासिल की है और 10 सीटों पर आगे है। इसी तरह श्रम संस्कृति पार्टी 5 हलकों में बर्तरी हासिल किए हुए है। वोटों की गिनती अभी जारी है। नेपाल की पार्लियामेंट के 275 अराकीन में से 165 अराकीन को सीधे वोटिंग के जरिए मुंतखब किया जाता है, जबकि 110 अराकीन तनासुब के एतबार से चुने जाते हैं। 275 रुकनी ऐवान नुमाइंदगान के लिए 18.9 मिलियन राय दहिंदगान वोट डालने के अहल हैं, जिनमें से तकरीबन 60% अफराद ने जुमेरात के रोज अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। मगरबी एशिया में लड़ाई का आज 8वां दिन है। इस दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ किसी भी समझौते से इनकार करते हुए गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा किया है। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने कहा कि एक मरतबा ईरान की जानिब से शिकस्त तस्लीम कर लेने के बाद अमरीका और उसके इत्तेहादी ईरान की माशी तामीर नौ में मदद करेंगे। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीका ईरानी फजाई हदूद का कंट्रोल हासिल करने की जानिब पेशकदमी कर रहा है और उम्मीद है कि 4 से 6 हफ्ते के दौरान मकासिद हासिल कर लिए जाएंगे। दूसरी जानिब ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान ने कहा है कि अमरीका और इसराइल के साथ जारी ईरान के तनाजे में कुछ मुल्कों ने सालिसी की कोशिशों का आगाज किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब पेजिशकियान ने कहा कि ईरान खित्ते में देरपा अमन के तई अहद बस्ता है, ताहम वो अपने मुल्क के वकार और सालिमियत के दिफा से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। भारत ने ईरान के बहरी जहाज को केरला के शहर कोची में लंगरअंदाज होने की इजाजत दी थी और इसके अमले के 183 अरकान को रहने की जगह फराहम की थी। सरकारी जराये ने बताया कि श्रीलंका के जनूब में आयरिस डेना के वाके से कुछ दिन पहले ईरान ने अपने बहरी जहाज आयरिस लवान को लंगर अंदाज करने की के बारे में भारत से राब्ता कायम किया था। ये जहाज भी बेड़े के बैन अलाकवामी जायजे के लिए खित्ते में था। जराये ने बताया कि ईरान की तरफ से ये दरखास्त पिछले महीने की 28 तारीख को मौसूल हुई थी, जिससे जाहिर होता है कि जहाज को कोची में लंगर अंदाज किया जाना जरूरी था, क्योंकि इस जहाज में कुछ तकनीकी खराबियां पैदा हो गई थी। जराये ने बताया कि लंगर अंदाजी की इजाजत इस महीने की पहली तारीख को दी गई थी। आयरिस लवान को कोची में 4 मार्च को लंगर अंदाज किया गया था और इसके अमले के 183 अरकान फिलहाल कोची में बहरी ठिकानों पर क्याम पजीर हैं। बहरी जहाज आयरिस डेना को श्रीलंका के साहिल के नजदीक अमरीका ने एक हमले में गर्क कर दिया था। मगरबी एशिया में जारी वाकयात और इसके नतीज में फजाई हदूद की बंदिश की वजह से भारतीय घरेलू ऑपरेटर्स की जानिब से चलाई जाने वाली कुल 278 परवाजें गुज़श्ता रोज मनसूख कर दी गईं। शहरी हवाबाजी की वजारत ने बताया कि कई रूट्स पर परवाजों पर असर पड़ा है। इस दौरान मुसाफिरों की बरवक्त मदद के लिए मखसूस कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जो एयरलाइंस और दीगर शराकत दारों के करीबी तालमेल के साथ 24 घंटे सातों दिन काम कर रहा है। एयर सेवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और हेल्पलाइन कॉल्स के जरिए अब तक 1,800 मुसाफिरों की शिकायतों का इजाला किया जा चुका है। वजारत ने मजीद कहा कि मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वह अपनी परवाजों की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर करीबी नज़र रखें और मुतालिका एयरलाइंस से राबते की रजिस्टर्ड तफसीलात के जरिए दी गई किसी भी मालूमात से बाखबर रहें। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन बर्मिंगम में जारी बावकार ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप में मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। लक्ष्य सेन ने कल रात क्वार्टर फाइनल में चीन के ली शिफिंग को 21-13 और 21-16 से शिकस्त दी। आलमी नंबर 12 लक्ष्य सेन का मुकाबला आज सेमीफाइनल में कनाडा के विक्टर लाई से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी की जानिब से हांगकांग की जोड़ी के खिलाफ रिटायर होने के बाद लक्ष्य मुकाबले में रह गए और वाहिद भारतीय खिलाड़ी हैं। मर्दों के आईसीसी T20 आलमी कप में कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान फाइनल मैच खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। सूर्य कुमार यादव की क्यादत में दिफाई चैंपियन भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड को सनसनीखेज अंदाज में 7 रन से हराकर फाइनल में पहुंचा है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम ने अपने कप्तान मिशेल सेंटनर की क्यादत में सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 9 विकेट की जीत हासिल की, जिसके दौरान टूर्नामेंट की तारीख में फिन एलन ने 33 गेंदों में अब तक की सबसे तेज सेंचुरी बनाई। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के जरिए कई रियासतों और मरकज के इंतजाम इलाकों में नए गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों की तकरीरी की खबर को शहसुर्खी बनाया है। विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख और तरनजीत सिंह संधु को दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। बजट के बाद तीसरे कौमी वेबिनार का इफ्तिताह करते हुए यादव मोदी ने कहा कि किसानों की आमदनी के अच्छे नतायज मिलने लगे हैं। इस खबर को भी रोजनामा प्रताप ने पहले सफ़े पर जगह दी है। रोजनामा इंकलाब ने इतवार को अधियादम के जरिए कौमी दारुल हुकूमत में तकरीबन 33,000 करोड़ रुपए के मुतादी तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखे जाने से मुतालिक खबर को अहमियत दी है। दिल्ली का इंदिरा गांधी मल्लकवामी हवाई अड्डा एशिया बहरुल काहिल का 5वां मसरूफ तरीन हवाई अड्डा बन गया, इस खबर को भी रोजनामा इंकलाब ने उजागर किया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने रायसेना डायलाग के दौरान वजीर खारजा ए जयशंकर की ईरान के नए वजीर खारजा खतीबजादा से मुलाकात की खबर को खसूसी तौर पर शाये किया है।
और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत की जरई मसनूआत को बरामदात के लिए साजगार और आलमी सतह पर मुकाबला जाति बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने ओडिशा में 3,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया है। एविएशन के जाब्ताकार इदारे DGCA ने जेवर में नोएडा बैन अलाकवामी हवाई अड्डे के लिए एरोड्रोम लाइसेंस की इजाजत दे दी है। नेपाल में बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आम इंतखाबात में मुकम्मल कामयाबी की जानिब बढ़ रही है, वोटों की गिनती जारी है। मगरबी एशिया के तनाजे का आज 8वां दिन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ उस वक्त तक कोई समझौता नहीं हो सकता जब तक कि वो बिला शर्त हथियार न डाल दे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।